ओम शांति। भगवान की पालना लेने वाले जहान के नूर आधार मूर्त उद्धार मूर्त विश्व कल्याणकारी बताओ सब अपने अपने समान मास्टर सर्व शक्तिवान हीरो पार्टधारी स्वराज्य अधिकारी भाग्यशाली आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा कलप कलप की विजयी आत्मा कल्याणकारी आत्मा शिव शक्तियां जगत माता बेगमपुर के बादशाह मायाजीत जगतजीत निर्विघ्न आत्मा निर्भय आत्मा प्रकृति जीत आत्मा और प्रभु पसंद मन पसंद लोक पसंद और खुश नसीब आत्मा। क्या बोल रहे हैं माता जी? दिल तख्त नसीन आत्मा परम पवित्र आत्मा और बताइए बताइए जी साक्षीपन के तख्त वाले साक्षी स्वरूप आत्मा कल्याणकारी हो गया और महान आत्मा बेहद की वैरागी आत्मा जी देवकुल की आत्मा निर अहंकारी आत्मा वाह निष्काम सेवाधारी। तो एक बाबा ही बाबा ने आज कहा कि निष्काम सेवाधारी तो केवल मैं हूँ क्योंकि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूँ। तो जो मुझे कोई मेरी सेवा करे है ना और शरीर भी नहीं है तो कोई मेरे हाथ पैर दबाए सर दबाए तो निष्काम सेवाधारी तो एक शिव बाबा ही है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा और निर्विघ्न आत्मा निर्भय आत्मा मास्टर ब्रह्मा क्या बोले मत विघ्न विनाशक आत्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा विशेष आत्मा वाह। माता जी का आते ही एकदम से खुल गया बुद्धि का ताला। बोलिए बोलिए कोटो में कोई कोई में भी कोई आत्मा एक के अंत में खोने वाली एकांत में रहने वाली लवलीन आत्मा जी एकांतवासी ना हाँ एकांतवासी आत्मा असंभव को संभव करने वाली आत्मा वाह क्या बात है बजाइए ताली माता जी के लिए। सफलता मूर्त आत्मा सदा संतुष्ट आत्मा विकर्माजीत आत्मा विजयी रतन आत्मा परिवार की अटूट स्नेही आत्मा आधार मूर्त आत्मा और जी संतुष्ट हो गया बता दिए वो उधर से आया जी पूर्वज आत्मा हाँ मैं इष्ट देवी हूँ। देखो भाई कितना बड़ा सम्मान है हाँ बजाओ तालियां माता जी के लिए। हाँ जी सिद्धि स्वरूप आत्मा हाँ लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाली आत्मा ये बहुत महत्वपूर्ण स्वमान है। यदि ये स्वमान यदि बुद्धि में हमेशा स्मृति में रहे तो बहुत सारी समस्याएं जो बाबा ने आज कहा ना कि हम व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या रूपी पत्थर तोड़ते हैं और उसमें हम अपना समय गंवाते हैं ठीक है ना। तो अभी जितने भी स्वमान आपने याद किए तो ये यदि स्वमान याद रहे तो क्या हम फिर वो पत्थर को तोड़ेंगे व्यर्थ संकल्पों के हैमर से विघ्न और समस्याओं के पत्थर को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम कौन है? बाबा कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ठीक है ना। बाबा ने हमको स्वमान याद दिलाए, लेकिन क्या होता है जब हम इन स्वमान से विस्मृत हो जाते हैं फिर हम पत्थर तोड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि जो भी ज्ञान की पॉइंट है उसको बार बार स्मृति में लाओ, चाहे बुद्धि में है चाहे डायरी में है। तो जब हम बार बार स्मृति में लाएंगे तो हमको नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा तब हमारा व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि व्यर्थ आता ही तब है जब कोई ना कोई कमजोरी हमारे मन में आती है ना। तो बाबा कहते हैं कि या तो आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाओ या तो फिर कहलाना छोड़ दो, ठीक है ना। जब तुम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और यदि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो सभी शक्तियां आपके अधिकार में है, और यदि सभी शक्तियां आपके अधिकार में है तो व्यर्थ कैसे आ सकता है, सही बात है ना। लेकिन व्यर्थ आता कब है? जहां थोड़ा गैप मिलता है और उसमें वहां पर माया फूंक मार देती है, ठीक है ना। तो सदा हम अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे तभी हम उन व्यर्थ से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, ये श्रेष्ठ स्मृतियां इसलिए नहीं है कि खाली हाँ बाबा ने बोल दिया और हमने सुन लिए, इसको बार 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 स्मृति में लाना है। कई लोगों का प्रश्न आता है कि भाई ये जो स्वमान का अभ्यास करना है तो 7 बार ही करना है कि 108 बार ही करना है कि एक दिन ही करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हमको प्रश्न पूछते हैं। तो हम स्वमान का आपको अभ्यास बताते हैं जो हम करते हैं। इसकी 3 स्थिति होती है। एक होता है कि जब व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बहुत तीव्र गति से होता है तो उस समय में जितने तीव्र गति से व्यर्थ संकल्प का फोर्स आ रहा है, व्यर्थ संकल्प में क्या होता है तीव्र गति से संकल्प चलते हैं, उस समय में आप यदि एक बार संकल्प कर लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसको जैसे पहले भक्ति मार्ग में क्या होता था, मंत्र पढ़ते थे, है ना, कि मैं मैंने कोई भी मंत्र को पढ़ते थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र पढ़ते थे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ठीक है ना। तो उस मंत्र को बार 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 कोई 1,00,000 बार जाप करता था, कोई अपने ऐसे निश्चित कर लेते थे कि इतनी बार जाप करेंगे, है ना। तो उससे क्या होता था, संकल्पों में शक्ति आती थी। वो जब हम संकल्प को बार बार दोहराते हैं उससे हमारा ओरा बढ़ता है, संकल्प में शक्ति आती है और फिर ओरा बढ़ता है, तो फिर बाहर की कोई भी कमजोरी का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जब हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, जब हमको भय लग रहा है, बहुत चिंता में है हम, बहुत तीव्र गति से हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो उस समय में इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। और एक समय आएगा फिर जो आपकी स्थिति शांत हो जाएंगे, आपके जो संकल्प है ना वो शांत हो जाएंगे, वो इतने फास्ट गति से नहीं चलेंगे, फिर उस समय आप संकल्प करके उसको अनुभव कर सकते हैं। कैसे? कि आपने संकल्प किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो जैसे आप संकल्प करेंगे तो आपको शक्तियों की अनुभूति होने लगेगी, अपने आप में यानी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये संपूर्ण निश्चय भी होगा, अंदर से आत्मविश्वास होगा, है ना। जब बहुत तेज गति से संकल्प चलते हैं और उस समय हम यदि संकल्प करते भी हैं तो डाउट होता है उसमें, पता नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या नहीं हूं, सही बात है ना। लेकिन जब हम इसको बार बार अभ्यास में लाएंगे, बार बार अभ्यास में लाएंगे और जब हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाएगी तो क्या होगा, फिर हमको अनुभूति होने लगेगी वास्तव में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और जब जिस शक्ति का हम आह्वान करेंगे वो शक्ति उस समय हमारे सामने आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी। तीसरा अभ्यास है कि जब इससे भी और हम ऊपर चले जाएंगे, माना और भी हमारे संकल्प बहुत एकाग्र हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि बस उस स्थिति में ही हम खोए रहेंगे। जैसे ऐसे लगेगा कि ऊपर से बस सब शक्तियां हमारे अंदर आते ही जा रही है और हम बिल्कुल शक्ति संपन्न है। ये तीन स्टेज होती है और ये सबकी होती है, चढ़ाव उतार सबके मन में आता है, चाहे वो 10 साल से भी योग कर रहे हैं, 20 साल से योग कर रहे हैं, 50 साल से भी योग कर रहे हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है। क्यों? क्योंकि हम जो 63 जन्मों से विकार के वशीभूत हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण, उसके कारण हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण हुई है। और मान लो विकार के वशीभूत नहीं हुए, कभी गम के वशीभूत हुए, कभी दुख के वशीभूत हुए, लेकिन जब भी हमारे मन में कोई नकारात्मक संकल्प आया उस समय हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण हुई। तो यही कारण है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मन बहुत शक्तिशाली रहता है, कभी तो ऐसा लगता है कि मैं तो बस बिल्कुल विजयी आत्मा हूं, अभी माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, बाल बांका नहीं कर सकती है, लगता है ना संपन्न, बिल्कुल ऐसा लगता है मैं तो अपने आप में संपूर्ण है, कोई भी विकार मेरे को टच नहीं कर सकता है। और कभी ऐसा होगा, ऐसा लगेगा पता नहीं, है ना, जैसे पानी में हो, पानी में से चलते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है पानी में से चलते हैं तो हम आराम से पार हो लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है पता नहीं डूब जाएंगे, तो वैसा ही इसमें भी होता है। हाँ ठीक है ना, पैर फिसलते हैं उसमें, पानी ज्यादा होता है, हमारा वजन उसकी तुलना में कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है फिसल जाएंगे, डूब जाएंगे, तो यहां पर भी ऐसे होता है। लेकिन ये हमको स्वमान का अभ्यास मरते दम तक करना है, माना जब तक हम शरीर छोड़ेंगे उस दम तक हमको अभ्यास करना है। ऐसा नहीं आपने 7 बार कर लिए, 108 बार कर लिए, वो उस दिन के लिए पूरा हो गया समझ लो, मान लो आपकी स्थिति अच्छी शक्तिशाली हो गई तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन में बहुत सारे संकल्प चलते रहते हैं, 24 घंटा संकल्प चलते रहते हैं, कोई भी परिस्थिति आती जाती रहती है ना, कुछ भी होता है तो संकल्प बहुत तीव्र गति से चलने लगते हैं। तो जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही हमको स्वमान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, कि योग में हम सबसे ज्यादा से ज्यादा स्वमान का अभ्यास करते हैं, और इससे ही मन कंट्रोल में आता है। मन को कंट्रोल करना है तो इससे सहज कोई भी अभ्यास हमको नहीं लगता अपने लिए, हर किसी का अपना अपना अनुभव होगा, लेकिन हमारे लिए, हमने अपने लिए जो अभ्यास किया है, सबसे सहज जो है स्वमान का अभ्यास है। क्योंकि मन में 24 घंटे क्या चलते हैं, संकल्प चलते हैं, ठीक है ना, तो संकल्प पर हमारा अटेंशन रहेगा तो उसी समय हम संकल्प चेंज करेंगे तो हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। कई बार होता है कि व्यर्थ संकल्पों का फोर्स चलते रहता है, हम उसमें बहते रहते हैं, स्मृति श्रेष्ठ स्मृति ही नहीं आती है, तब फिर दिन भर हम परेशान हो जाते हैं, फिर बाद में हम थक जाते हैं, हमारा मन भी थक जाता है। तो इसलिए इस बात पर बहुत अटेंशन हमको रखना है। और हमारा मन कमजोर हुआ, हमारे मन की शक्ति क्षीण हुई, क्योंकि 63 जन्म हम ये विकारों के वशीभूत रहे, इसलिए अनायास भय आता है, अनायास निगेटिव संकल्प आते हैं। कल हमको एक माताजी पूछ रहे थे कि माना हमको भय लगता है, अचानक भय लगता है, फिर हम भयभीत हो जाते हैं। तो हमने उनको परसों के दिन का अपना एक अनुभव सुनाया। परसों के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि रात को बारिश हो रही थी, तो हम यहाँ ओम शांति भवन में, वहाँ छोटा सा स्टूडियो है, वहाँ बैठे थे, हम सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते हमको 11:30 बज गया वहाँ पर। अब हमने सोचा अब रूम पर जाएंगे, हमारा रूम वहां से उधर जाने में बहुत दूर है, पीछे जाना पड़ता है, और जब बाहर निकल के देखे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा अभी क्या किया जाए, तो फिर हम जो है हमने सोचा इधर ही सो जाते हैं, तो हम उधर ही सो गए। तो हमको सोने में 12 तो बज गया था, 2 बजे हमारी बराबर नींद खुल गई। और जैसे ही यानी नींद खुली, चेतना थोड़ी आई, तो हमको भी थोड़ा भय लग रहा था, क्योंकि एकदम गुफा जैसे, और उधर हम अकेले ही थे और कोई था ही नहीं उधर। तो और ऐसा लग रहा था कोई भूत नाच रहा होगा या कोई ऐसी छाया आ रही होगी, रियल बात बता रहे। तो लेकिन हमने दूसरे सेकंड हमने संकल्प किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और भय कहां गया कुछ पता ही नहीं लगा। फिर हमने क्या है कि थोड़ा योग किए, क्योंकि हमने अपना ये सिद्धांत बना लिए। कई लोग माना प्रश्न पूछते हमको कि भाई आप कितने बजे उठते हैं, या हमको कितने बजे उठना चाहिए। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई 2 बजे जागना चाहिए, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, कोई समझते अभी 4 बजे हमको उठना चाहिए, अभी 2 बजे नींद खुल गई, उसके बाद अभी तो ठीक है 2 बजा है, 4 बजे उठेंगे, थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर क्या होता है, सो जाते हैं और सो ही जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ये रियल बात है, हैं? वो सोए इधर देखे तो 4:30 बज गया, फिर फटाफट उठे, फिर अरे योग तो मेरा मिस हो गया, ऐसा हम सोचते हैं कई बार। तो हमने क्या अपने लिए बनाया है, जब जागे तभी सवेरा। तो जितने समय भी नींद खुल जाए, हम पहले उठ करके योग कर लेते हैं, अपना कोटा पूरा कर लेते हैं उस दिन का, फिर उसके बाद में निश्चिंत होकर सो जाते हैं, हम कभी अलार्म नहीं लगाते। और आप निश्चिंत होकर के सोएंगे ना, तो आपकी नींद बराबर होगी, और आपकी बराबर 4 बजे नींद खुलेगी, 100% खुलेगी, 4:30 नहीं बजेगा। वो कब होता है, जब हम किसी शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं, या फिर हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, नींद बराबर नहीं हुई है, तो क्या होता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। बाकी हम स्वस्थ हैं तो आपकी बराबर नींद खुलेगी, जो संकल्प आप करके सोएंगे उसी समय आपकी नींद खुलेगी और बिल्कुल फ्रेश उठेंगे आप। तो हमने अपना ये नियम बना लिया है। फिर कई लोग क्या होता है कि जैसे अमृत वेला मिस हो जाता है, तो क्या फिर खूब पश्चाताप करते हैं, फिर एकदम गमगीन हो जाते हैं, फिर एकदम दुखी हो जाते हैं। ये हमको अनुभव इसीलिए, क्योंकि कई लोग हमको पूछते हैं ना, प्रश्न भी पूछते हैं, तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि भाई आपने अपने एक तो नुकसान कर लिया, फिर दूसरा आप इसको और नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी हो गया वहीं फुल स्टॉप लगाओ, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, अपने समान का अभ्यास करना प्रारंभ कर दो, ठीक है ना। और पूरे दिन भर आप अटेंशन रखो, कम बात करो, बात करने में अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, है ना, तो वो रिकवर हो जाएगा। कई बार ये होता है कि मान लो अमृत वेला सवेरा मिस हो गया, कई बार यदि हम जाग भी गए लेकिन पावरफुल अमृत वेला नहीं हुआ तो क्या करें, तो फिर दिन भर अटेंशन रखो, चलते फिरते उठते बैठते, ये नहीं कि हमने अमृत वेला कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, समझ गया ना। पूरे 24 घंटे बाबा ने क्या कहा है, हमारा एक संकल्प भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक संकल्प भी वेस्ट गया तो संकल्प हमारा कितना बड़ा खजाना है, ठीक है ना। तो हमको पूरे 24 घंटे ही अपने ऊपर पूरा पहरा रखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग अमृत वेला कर लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फिर दिन भर में अलवेले ऐसे ही नॉर्मल रूप से चला गया, तो नहीं। और यदि कोई भी समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो आप जो उसको वरदान बना लो, है ना। हमने एक गीत लिखा है, मुस्काइए मुस्काइए गीत खुशी के गाइए, उसमें ये शब्द है कि मुसीबतों को वरदान बनाइए, उदित नारायण जी ने उसको गाया है, कभी आप सुनना, मेरे ख्याल से वाह बाबा वाह नाम की सीडी में है वो गीत, बहुत। तो वो हमने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से उसको लिखा है कि जब समस्याएं आती है, जब परिस्थितियां आती है, तो उस समय यदि हम हिम्मत नहीं हारते हैं तो हमारे लिए वो वरदान बन जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक के लिए बताते हैं ना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो 1000 बार उसको असफलता मिली, बताइए उसकी सहन शक्ति कितनी रही होगी। यहां तो हमको 2 क्या 5 बार में ही हम हिम्मत छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हमको कुछ उदाहरण बुद्धि में रखने चाहिए, उससे हमको बल मिलता है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आई है, परिस्थिति आई है, और उस परिस्थिति को उसने कैसे पार किया है, उसको भी स्मृति में रखने से जब हमारे पास समस्या आती है तो उस समय में हमको बल मिलता है। हमने पहले भी आपको बताया था एक अनुभव कि जब ये एक यान बनाए थे और मंगलयान था ना, जो स्पेस में छोड़ा गया था और वो जाकर के वहां पर असफल हो गया था, तो असफल होने के बाद में मोदी जी गए वैज्ञानिकों के पास में और उनका कितना उत्साह बढ़ाया उन्होंने, वही फुल स्टॉप। आगे की सोचो, आगे क्या करना है, और भी इससे अच्छा करना है, और सफलता मिलेगी। वो हमारी बात बुद्धि में थी। देखो, हमारे तो जो प्रेरणा स्रोत है वो बाबा और मम्मा है, और वरिष्ठ भाई बहने हैं, दादा है, दादियां हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने मम्मा बाबा को तो देखा नहीं है ना, ज्ञान की सुनी हुई बात होती है, लेकिन जो देखी हुई बात और जो वर्तमान की बात होती है ना, वो ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें भी यदि हम याद रखेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में मदद करेगी। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसी समस्याएं, परिस्थितियां आई, बहुत बड़ी एक समस्या आई, लेकिन हमने वही सोचा कि उन्होंने कैसे परिस्थिति को पार किया, अब हम भी इस परिस्थिति को पार करेंगे। तो फुल स्टॉप उसमें। हम सबसे ज्यादा अपना समय और शक्ति व्यर्थ सोचने में खर्च करते हैं। कभी भी व्यर्थ सोचना नहीं चाहिए। हमने तो फुल स्टॉप और तुरंत अपने को चेंज करने का यानी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। हमारे में एक संस्कार बहुत कमजोर था कि कोई भी ऐसी बात हो जाती थी ना तो हम बहुत हड़बड़ा जाते थे, बहुत फास्ट गति से माना हमारे संकल्प चलते थे, चिड़चिड़ापन आ जाता था, या कोई सेवा में कोई गड़बड़ी हो गई एक दो के बीच में तो थोड़ा हेरिटेट हो जाएंगे, ऐसा होता था, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हमने इसके ऊपर में बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, और अभी भी माना कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए वहां पर ही पहले सोचते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बाहर गया है, ठीक है, और वो आया नहीं, रात का समय हो गया है, बारिश हो रही है। अभी छोटे भाई लोग हमारे जाते थे ना, पहले हम ऐसा सोचते थे, अरे क्यों नहीं आया होगा, क्या हो गया होगा, तो यानी बहुत भय होता था हमारे मन में, बड़ी चिंता हो जाती थी। फिर वही वही कोई निगेटिव बात, ऐसे लोगों के मन में निगेटिव संकल्प आते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं कुछ ना हो गया हो, कहीं बाढ़ में ना फंस गया हो, है ना। लेकिन अभी हमको क्या करना है, वो सब बातों को फुल स्टॉप लगाना है, और हमको ये सोचना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है, बहुत अभ्यास किया है, क्योंकि हमारा एक खुद का संस्कार माना कमजोर था ज्ञान के पहले, तो इसके लिए हमने बहुत पुरुषार्थ किया है। तो हमको फुल स्टॉप लगाने का तो बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है। कोई भी बात को कई बार होता है ऐसे कि तुरंत यानी परिस्थिति का प्रभाव पड़ जाता है, एक सेकंड, दो सेकंड, एक मिनट रहेगा, लेकिन जल्दी वो हमारे ऊपर हमेशा हावी नहीं रहता है। अब बहुत सारी जो भी परिस्थितियां आएगी, ऐसी तो आती रहती है ना, छोटी छोटी बातों की परिस्थितियां, लेकिन पहले कोई भी बात होगी तो हम बहुत फीलिंग में आ जाते थे, दुखी हो जाते थे, वही वही बात को सोचते रहते थे। लेकिन अभी हमने इतना पुरुषार्थ किया है, फीलिंग आएगी भी, समझ लो एक सेकंड के लिए आएगी भी, दो सेकंड के लिए आएगी भी, एक मिनट के लिए आएगी, लेकिन स्वमान का अभ्यास करते करते, पढ़ते पढ़ते, कुछ लिखते लिखते, उसको तुरंत खत्म कर देते हैं। ये माता जी को माइक माता जी की बात सुने आपने? नहीं सुने? माता जी हमारे लिए बोल रही हैं कि मैं इतने दिन से ये भाई को देख रही थी तो सोच रही थी ये भाई गूंगा तो नहीं है। ये भाई बोलता भी नहीं है, ये तो पूरा देवता ही है। और अभी मैं सुन रही हूँ कि ये तो इतनी अच्छी क्लास करा रही है। एक माताजी हमको शिकायत कर रही थी, पिछली क्लास में भी हमने सुनाया था कि सूरज भाई जी जो है वो क्लास कराते हैं तो हंसाते हैं, सचिन भाई क्लास कराते हैं तो आप हंसाते हैं, आप तो हंसाते ही नहीं। क्या हम सोचे कि हम कैसे हंसाएं क्या हंसाएं, लेकिन देखो आज बाबा ने खुद ही हंसा दिया ना आप लोगों को। बाबा माताओं की बहुत सुनते हैं। हाँ, कभी भी आप देखो सबसे कमजोर संकल्प क्या करते हैं ना माताएं, माताएं सोचती है अरे हम तो माताएं हैं, खाना बनाने वाली माताएं हैं, रोटी बनाने वाली माताएं हैं, हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर में रहने वाली बड़ी बड़ी बहनें हैं, ये मधुबन में रहने वाले बड़े बड़े भाई बहने हैं, और ये जो कुमार है ये कुमारियां हैं, यही सब कुछ करेंगे, ऐसा सोच सोच के अपने आप को कमजोर कर लेती है। लेकिन नहीं, वो आपकी बात नहीं, पर कई बार ऐसा सोचते हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हम, है ना। उससे क्या आता है, अपने मन में एक हीन भावना आ जाती है, और फिर जो कुछ हमको आगे करने का उमंग उत्साह है ना, वो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो इसीलिए जो है सदा याद रखो, देखो सबसे ज्यादा महिमा बाबा किसकी करते हैं, माताओं की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंदे मातरम है। हाँ, घर बैठे, और जो है भगवान को मदद करने वाले भी सबसे शुरू में कौन थे, माताएं थी, है ना। मुट्ठी मुट्ठी थोड़ी थोड़ी, इतना सब्जी इतना चावल इतनी मिर्ची इतना नमक लाला करके बाबा के यज्ञ में माना दिया। तो भगवान के मददगार कौन बने बताओ, माता बने कि कोई धन संपत्ति वाला, कि कोई बड़े कुमार कुमारियां या बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बने, बताइए। तो ये नशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम भगवान के मददगार हैं। नई सृष्टि की स्थापना में सबसे पहला हमारा रोल है। सुदामा का जो यादगार है, आज भी मुरली में दीदी ने बताया ना कि सुदामा जो है मुट्ठी चावल लेकर के गया और वो देने को डर रहा था, सही है ना, देने को डर रहा था, छुपा रहा था, लेकिन सुदामा ने जो है उसको छीन करके निकाल लिया, है ना, कृष्ण ने सुदामा के पास से, ठीक है ना। तो वो यादगार किसका है, वो तो असली में यादगार माताओं का है, समझे। जो माताओं ने इतना इतना मुट्ठी मुट्ठी चावल सब्जी तेल और हल्दी नमक मिर्ची ला करके दिया था, तो इतना नशा होना चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसा नशा रहेगा ना, स्वमान रहेगा ना, तो आपको अपने आप खुशी आएगी, शक्ति आएगी, आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, है ना। कौन साथी है हमारा, स्वयं भगवान। कौन महिमा कर रहा है हमारी, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमारी महिमा कर रहा है ना। और वो जैसे वो शिवलिंग की बताया ना दीदी ने मुरली में आज, कि भी शिवलिंग की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमने भगवान को नई सृष्टि की स्थापना में मदद किया है, उसके फलस्वरूप हमारी पूजा हो रही है। तो इस बात को भी याद करेंगे ना, तो आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है, जो भी व्यर्थ है, वो सब समाप्त हो जाएगा। सबसे यही हमको सहज और सरल पुरुषार्थ करना है कि हमारे मन के अंदर का, मन बुद्धि के अंदर का व्यर्थ समाप्त हो जाए, है ना। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे, है ना। अपने स्वमान की माला का सिमरण करो, है ना। आपे ही पूजारी है ना, है क्या नहीं। तो किसकी पूजा, पहले अपनी ही पूजा करो, है ना, अपनी ही माला सिमरण करो। जब अपनी माला सिमरण करेंगे तो बाबा ने कहा कि तुम जो संकल्प करेंगे उस संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा, समझ गया ना। वो वाइब्रेशन सारे विश्व में जाएंगे, फिर जो भी आत्मा है जिसको भी वो वाइब्रेशन जाएंगे ना, वही उसी रूप से फिर आपका माला का सिमरण करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, ठीक है ना। तो दो संकल्प बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थ करना है तो एक बाबा ने बताया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, पर ये तो साधारण पुरुषार्थी का है स्लोगन बाबा ने बोला है। लेकिन एकदम तीव्र से तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है तो हमको संकल्प याद रखना है कि जो संकल्प मैं करूंगा उसका वैसा ही वायुमंडल बनेगा और उसके वैसे ही वाइब्रेशन संसार को जाएंगे। तो जब इतना अटेंशन रहेगा तो फिर हमारे बुद्धि में व्यर्थ संकल्प आएगा, आएगा क्या बताइए, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए जब हम अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, समर्थ हो जाएगी। सदा शुभ भावना में रहेंगे, श्रेष्ठ कामना, विश्व कल्याण की भावना रखेंगे, है ना, अपनी वृत्ति को, दृष्टि को श्रेष्ठ बना करके रखेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारा ये व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति श्रेष्ठ और समर्थ होगी तो क्या होगा, मन के अंदर की जो हलचल है वो समाप्त हो जाएगी, अचल और अडोल स्थिति बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हमको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, सही बात है ना, करत करत अभ्यास के, हाँ? तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए यानी हमने एक दिन दो दिन अभ्यास कर लिए, 21 दिन अभ्यास कर लिए फिर हो गया, नहीं। हाँ क्या बोले मेरे समझ में नहीं आया। वो गुजराती में बोले ना, अच्छा ठीक है। मैं आपने जो कल प्रश्न पूछे थे ना उसका मैं बता देता हूँ उत्तर। आपने क्या पूछा था कि ये माताजी ने ये पूछा था कि हमको जो है ऐसा संकल्प आया कि वो हमारा कोई भाई है वो शरीर न छोड़ देवे, तो 6 महीने के बाद में उस भाई ने तो शरीर नहीं छोड़ा पर दूसरे भाई ने शरीर छोड़ दिया। तो हमने माताजी को अपना अनुभव सुनाया, जब हमको ज्ञान मिला ही था, 6 महीने भी नहीं हुए थे, तो हमको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि घर में कुछ घटना घटने वाली है। हम कहाँ पर थे, बॉम्बे में थे, और हमारा घर कहाँ, एमपी में, 1200-1300 किलोमीटर दूर। लेकिन हमको वहां पर संकल्प आया, हमने सुबह अपने पिताजी को फोन किया, हमने कहा कि आप जो है कि कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी ऐसी समस्या आ जाए, घबराना नहीं, हम यहाँ पर है, हम भगवान को याद कर रहे हैं, आप सब भी भगवान को याद करो, ऐसा करके हमने बोल दिया। और उसके बाद में जो है कि हमने बहुत बाबा को याद किया, वाइब्रेशन भेजे, और 7 दिन के बाद में क्या हुआ, हमारे लौकिक भाई ने, छोटे भाई ने शरीर छोड़ दिया, 20 साल की उम्र थी उसकी। अब आप देखो कि माना, और वो सबका प्यारा था, तो घर में कितने हाहाकार होना चाहिए ना, कितने लोग रोना चाहिए, बहुत दुखी होना चाहिए। लेकिन हमको फिर अचानक फोन आया और हम गए तुरंत। लेकिन आप देखो हमारे घर की इतनी स्थिति अच्छी थी कि कोई भी व्यक्ति रोया नहीं। वो बाकी लोगों को ज्ञान नहीं था, ज्ञान में तो मैं अकेला ही था, और मुझे भी 6 महीने ही हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे। तो कभी भी ऐसा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि माना ऐसा संकल्प क्यों आया, क्योंकि वो संकल्प आया तो हमने पुरुषार्थ किया ना। हाँ, यदि पुरुषार्थ नहीं करते और फिर भय में रहते, फिर डरते, तो नुकसान होता। 2 साल पहले की हम आपको बात बता रहे हैं, हम नीचे गए थे आबू रोड, सुबह 7 बजे यहां से हम निकले थे, और जैसे ही गाड़ी में बैठे स्टार्ट किए, और हमको संकल्प आया कि कहीं ब्रेक लगाते हुए कहीं एक्सीलेटर पर ही पैर न चला जाए, ऐसा संकल्प आया। तो उसी समय हमने बाबा को याद किया, और बहुत याद करते पूरा जाते समय एकदम हम अटेंशन में थे कि मेरा कभी भी एक्सीलेटर से ब्रेक और ब्रेक से एक्सीलेटर पर गड़बड़ पैर नहीं जाना चाहिए। वहां से जब हमने वापस माउंट यहां आने के लिए माना गाड़ी स्टार्ट किया, तो भी हम उस संकल्प पर बिल्कुल अटेंशन था हमारा, ब्रेक पर और एक्सीलेटर पर, कि जहां हमको पैर रखना है वहीं रखना है। इतना अटेंशन रखते हुए हम आए, बाबा को याद कर रहे थे, और ये नकीले का जो सर्किल है, ये सर्किल पर आए, और एक लड़की हमारे गाड़ी के सामने में आ गई, और वही हुआ, इतना अटेंशन रखने के बाद भी ब्रेक पे पैर जाने के बजाय वो गया एक्सीलेटर के ऊपर ही, और गाड़ी रेस हो गई, और वो जो है लड़की को धक्का लगा और वो एकदम साइड में छिटक गई। ये 2 साल पहले की बात है, अभी नई बात है बिल्कुल। अभी क्या है कि हमने तो गाड़ी बंद की है और वहीं पर बैठ गए चुपचाप, वो लोग मारने के लिए आने लगे हमको, सारे लोग थे वहां पर। तो क्या है कि एक भाई था, आप इधर जानते हो, वो थोड़ा अपाहिज हो गया है, वो सामने आया, बोलता है ये इधर का ही निवासी है, बोलता है वो कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है, बोलता है वो लड़की इधर से आई, तुम लोग इधर से आए, क्या करे। मैं तो चुपचाप ही बैठा रहा और बाबा को याद करता रहा बस, अभी क्या करूं। मेरे को डर भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसा ही बैठा हुआ हूं। फिर बाद में वो भाई आया तो वो लड़की को कुछ नहीं हुआ था, मैं वही बोला था इसको कुछ होना नहीं चाहिए, एकदम उछल गई, मैंने देखा उसको। तो फिर बाद में जो है कि उनको मैंने अपने गाड़ी में बिठा करके ग्लोबल हॉस्पिटल लेके गया, वहां चेक कराया, थोड़ा घबराहट तो हो रही थी मुझे, लेकिन मैं बाबा को याद कर रहा था। फिर वहां पर कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल रिपोर्ट थी। फिर थोड़ा मैंने दवाई ववाई ले दिया, 500 रुपए खर्चा हुआ और वो काम निपट गया। देखो बाबा ने टचिंग कराया था वो, मैं निगेटिव सोचता मुझे ऐसा क्यों संकल्प आया और उसी संकल्प के उधेड़ भून में रहता तो क्या हाल होता। बाबा बोलते हैं कि जो सूली से, पहाड़ से सूली और सुई से कपास हो जाता है, बोलते हैं ना राई, राई, हाँ राई से रुई, तो वो बात हो गई ना। क्योंकि मैंने पूरे समय ध्यान रखा और पूरे समय मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये समान का अभ्यास करता रहा और जो भी कोई विघ्न आने वाला होगा उसको भी पवित्रता के वाइब्रेशन में देता गया, तो इसलिए सुई से काटा हो गया वो, है ना, हाँ, और राई से रुई हो गया। तो इसलिए कोई भी ऐसा संकल्प आ भी गया तो आप ये नहीं सोचो कि ऐसा निगेटिव संकल्प क्यों आया, उसी समय पुरुषार्थ करना शुरू करो, है ना, श्रेष्ठ संकल्प लो, कोई भी बात होगी। ये बाबा की टचिंग है, बाबा ने कहा है कि जब अंत समय होगा, आखिरी प्लेन होगा, आखिरी ट्रेन होगी और आपको बाबा की टचिंग आएगी, बस उठो। अब आप सोचेंगे और कुछ सोचते रहेंगे तो आप उधर ही रह जाएंगे, विनाश में ओम शांति हो जाएंगे, और नहीं तो बाबा ने बोला है अंत समय में भी आप वहां से बैठ करके यहाँ पर आ जाएंगे और ये अंत समय में एस्लम बनेगा और यहाँ पर बैठ करके विनाश देखेंगे। तो हमको ऐसा निगेटिव और व्यर्थ सोचना ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम अब केवल समर्थ सोचने का है, ठीक है ना। तो अभी लास्ट में एक कविता लिखे है वो सुना देते हैं, फिर देखो जीवन में शांति कैसे आए उसके लिए एक कविता लिखे वो सुनाते हैं पहले, कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सब में हो निस्वार्थ प्यार, जीवन में शांति की आएगी बाहर, जीवन में शांति की आएगी बाहर, है ना, ये दो बातों की धारणा होगी। फिर है संतुष्टता का पहनो हार, संतुष्टता का पहनो हार, जो मिल जाए समझो अपार, अपार माना अखूट, हाँ, और खुशियों का पाओगे आगार, आगार माना जैसे एक बहुत बड़ा ऐसा ना जहां बस अड्डा होता है, बसें खड़ी होती है, उसको ऐसा आगार बोलते हैं, हाँ, तो खुशियों का पाओगे आगार और सुखमय होगा फिर संसार, जीवन में शांति की आएगी बाहर, जीवन में शांति की आएगी बाहर। ये सब धारणा करने की चीजें, ये चीजें हम धारणा करेंगे तब हमारे में अपने आप शांति आएगी। भेदभाव को छोड़ो तुम, भेदभाव को छोड़ो तुम, शिव से नाता जोड़ो तुम, बेहद का है अपना संसार, सब में आत्मा ज्योति निहार, जीवन में शांति की आएगी बाहर, जीवन में शांति की आएगी बाहर। आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई, छोड़ो ईर्ष्या बैर लड़ाई, शांति धाम सबका घर बार, शांति में सारा संसार, जीवन में शांति की आएगी बाहर, जीवन में शांति की आएगी बाहर। सबका पिता एक शिव है, सबका पिता एक शिव है, पवित्रता शांति की नींव है, और शिव पिता शांति सागर, हर पल उसका कर दीदार, जीवन में शांति की आएगी बाहर, जीवन में शांति की आएगी बाहर। दीदार का मतलब होता है कि हमेशा उसको देखते रहना, है ना, अपने सामने में रखना। अभी कुछ थोड़े ना ज्ञान के दोहे लिखे हैं वो भी सुना देते हैं, सुना दो एक मिनट में, नहीं बाद में नहीं, पूरा करें एक मिनट। देह भान को त्याग कर निज धाम करे गमन, और दुख दर्द को भूल कर प्रभु प्रेम में मगन, प्रभु प्रेम में मगन। और जग के रिश्ते तोड़ प्रभु से लगाओ लगन, और मिटे सर्व चिंताएं अनुभूति करे गहन, अनुभूति करे गहन। और रूठना ऐसी टाटरी, बाबा बोलते हैं ना कि जो बहनों से रूठ जाते हैं और भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, उस पर से हमने इसको लिखा है कि रूठना ऐसी टाटरी फूले ढोकला खमन, और भला बुरा सुनते रहो करते रहो सहन, करते रहो सहन। और जन्म जन्म के दुखों को करते रहे वहन, और परम पिता को पाए के नम हुए नयन, नम हुए नयन। माया माया सब कहें माया क्या है चीज, और माया बिल्ली कुछ नहीं व्यर्थ संकल्पों का बीज। ठीक ठीक है, लंबा है, इतना ही पूरा करते। ओम शांति, ओम शांति।